Hare Krishna. So this is morning Bhagavatam lecture dated 9th, 7th, 2006. Srimad Bhagavatam by His Grace Rukmini Krishna Prabhu.
धर्मेण मान्यत्यं निराशीषदयान्विता भजते शनकेस्तस्य मनोराजं प्रसीदति या स्वधर्मेण मान्यत्यं निराशीषदयान्विता भजते शनकेस्तस्य मनोराजं प्रसीदति या स्वधर्मेण मान्यत्यं निराशीषदयान्विता भजते शनकेस्तस्य मनोराजं प्रसीदति
स्वधर्मेण मामित्यं निराशीषदयान्वितः मनोराजं प्रसीदति
या स्वधर्मेण मामित्यं
निराशीषदयान्वितः
स्वधर्मेण मामनेत्यं
निराशीषदयान्वितः
भजते शनकेस्तस्य
मनोराजं प्रसीदति
Thank you. अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की
जय।
यहाँ
जो भी
स्वधर्मेण
अपने
व्रती परक कार्यों के द्वारा माम मुझको नित्यम नियमित रूप से निराशि
बिना
किसी उद्देश्य के
श्रद्धया
श्रद्धा तथा भक्ति से
अन्विता
युक्त भजते पूछता है शनकै धीरे धीरे तस्य उसका मना मन राजन हे राजा पृथु प्रसीदति पूर्णतया तुष्ट हो जाता है। अनुवाद मेरे पीछे दोहराएंगे। भगवान विष्णु ने कहा
हे राजा पृथु
जब कोई अपना व्रतिपरक कर्म करता हुआ
किसी
भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है तो वह अपने अंतः में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। तात्पर्य विष्णु पुराण से भी इस श्लोक की पुष्टि होती है। व्रतिपरक कार्य को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं और यह भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के चारों वर्गों और आश्रमों पर लागू होता है। यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ब्रह्मचार्य ग्रस्त वानप्रस्थ तथा संन्यास। जब कोई वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता वह क्रमशः संतुष्ट होता जाता है। जीवन का परम उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्री भगवान की भक्ति करना है। भगवद गीता में इसी प्रक्रम को कर्म योग कहा गया है। अन्य शब्दों में हमें केवल भगवान की तुष्टि तथा सेवा के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा हम सब कर्मों की कर्म फलों के बंधन में फंस जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में लगा हुआ है किंतु भौतिक व्यवसायों का उद्देश्य लाभ नहीं होना चाहिए, अपितु हर एक को चाहिए कि अपने अपने कर्मों के फल प्रदान करे। ब्राह्मण को विशेष रूप से अपना कर्म भौतिक लाभ की दृष्टि से ना करके श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। इसी प्रकार से क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र को भी कर्म करना चाहिए। इस जगत में हर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगा है किंतु ऐसे कर्मों का उद्देश्य श्री भगवान को प्रसन्न रखना होना चाहिए। भक्ति अत्यंत सरल है और कोई भी इसे अपना सकता है। जो जिस रूप में है वैसे ही रहे, उसे अपने घर में परमेश्वर के अर्चा विग्रह को स्थापित भर करना होगा। यह विग्रह चाहे राधा कृष्ण का हो या लक्ष्मी नारायण का। इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र अपने परिश्रम के बल पर अर्चा विग्रह को पूज सकता है। चाहे जो भी वर्णाश्रम धर्म हो, मनुष्य को श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन समर्पण आदि के द्वारा भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अपने को भगवान की भक्ति में लगा सकता है। जब भगवान सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। ओम अज्ञानदमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण। तो आप सबका आज की सुबह की भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। अध्याय का नाम है महाराजा पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। तो पिछले कुछ श्लोकों से हम पढ़ रहे हैं कि महाराजा पृथु के जब 100वें अश्व यज्ञ में इंद्र ने विघ्न डाला और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने इंद्र को परामर्श दिया कि आप अब 100वां यज्ञ बंद कर दीजिए। तो राजा पृथु ने परम आचार्य परम वैष्णव ब्रह्मा जी की आज्ञा को पालन किया और 100वां यज्ञ वहीं छोड़ दिया। तो उनके इस कार्य से, उनकी विनम्रता से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि जिनकी प्रसन्नता के लिए वो 100 यज्ञ कर रहे थे, हालांकि राजा पृथु ने 100वां यज्ञ पूरा नहीं किया, तब भी भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हो गए और उनसे प्रसन्न होकर उस यज्ञ स्थल पर प्रकट होते हैं। और यज्ञ स्थल पर प्रकट होकर महाराजा भगवान विष्णु महाराजा पृथु को उपदेश दे रहे हैं और महाराजा पृथु के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं। पिछले श्लोक में, दो श्लोकों से, वो सातवें श्लोक में उन्होंने अपना वर्णन किया, भगवान विष्णु ने अपना परिचय दिया कि वो कैसे हैं। वो शुद्ध हैं, अभौतिक हैं, स्वयं तेजमय हैं और समस्त गुणों के आगार हैं, सर्वव्यापक हैं। और कल के श्लोक में उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों को प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव मेरे दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहता है। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे राजा पृथु, जब कोई अपना व्रतिपरक कर्म करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है, तो वह अपने अंतः में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। या स्वधर्मेण, जो अपने कार्यों के द्वारा माम नित्यम, मुझे निरंतर निराशी बिना किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य से श्रद्धयान्विता श्रद्धापूर्वक भजता है, शनकेश तस्य धीरे धीरे उसका मना मन राजन प्रसिद्धति, हे राजन संतुष्ट हो जाता है। तो एक तरीके से भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में मन की संतुष्टि चाहिए। ठीक बात है, सबको चाहिए ना मन की संतुष्टि। तो ये आज भगवान हमें फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण रूप से संतुष्ट रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने व्यवसाय का पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक अपने ही व्रतिपूर्वक कर्मों से बिना भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। अगर हम इस तरीके से अपने भौतिक कार्यों में लगते हुए और उन कर्मों के फल को भगवान को अर्पण करेंगे तो हमें मन की संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए हमें इसकी और विस्तार में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि सारे के सारे वैदिक शास्त्रों का ये निर्णय है, ये निचोड़ है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, कि ईश्वर तो बहुत है लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है, अनादिरादिर गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है और वही सबसे पहले आदि पुरुष है, सर्व कारण कारण, वो सब कारणों के कारण है। तो कृष्ण सब कारणों के कारण है। सारे वेदिक और भी वेदों में बताया गया है, ऋग्वेद में और अलग अलग उपनिषदों में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी नहीं थे, शिव जी नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो कौन थे, केवल केवल नारायण थे। अब यही कृष्ण आत्मा राम है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि यही कृष्ण ने क्या किया, कामयत बहुश्याम, कि उनकी इच्छा हुई कि मैं बहुत अपना विस्तार करूंगा, उनकी इच्छा हुई क्योंकि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो कृष्ण ने अपना विस्तार बहुत से जीवों में किया, यानी कि हम सब जीव क्या हैं, कृष्ण के विस्तार हैं। तो कृष्ण ने अपना विस्तार बहुत से असंख्य जीवों में कर दिया, ये उनकी इच्छा हुई। अब ये प्रश्न को पूछ सकता है कि आखिर कृष्ण ने विस्तार क्यों किया, कृष्ण ने असंख्य जीवों में विस्तार क्यों किया, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। कृष्ण ने हम सब को एक हमारा जो सृष्टि की, वैसे तो आत्मा सनातन है, जो विस्तार की आत्मा का, आत्माओं में, तो हर एक आत्मा का एक ही कर्तव्य है कि वो कृष्ण को आनंद दे। यानी हम सब के जो सृष्टि की गई, हम सबका अस्तित्व केवल इसीलिए है कि हम कृष्ण को आनंद दे सकें, इसीलिए कृष्ण ने अपना विस्तार सब जीवों में किया। अब इन जीवात्माओं में जिनको कृष्ण ने बनाया उन अपने आनंद के लिए, कुछ जीवात्माएं विद्रोही हो गई, वो बोले हम कृष्ण को आनंद क्यों दें, हम स्वयं आनंद लेंगे। तो जिन आत्माओं विद्रोही आत्माओं के मेरी इच्छा उत्पन्न हुई, उनके लिए भगवान ने क्या किया, ये भौतिक सृष्टि की रचना की। तो भौतिक सृष्टि की रचना किस लिए की, हाँ जी, भगवान ने भौतिक सृष्टि की रचना सब ऐसे विद्रोही जीवों पर बहुत कृपा की, ये कृपा है भगवान की जिन्होंने भौतिक सृष्टि की रचना की। कृपा ऐसे है कि इस भौतिक सृष्टि के द्वारा भगवान सब बद्ध जीवों को ये अवसर दे रहे हैं कि वह अपना शुद्धिकरण करके वापस भगवत धाम जाएं। तो ये पूरी की पूरी भौतिक सृष्टि की रचना के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम अपना शुद्धिकरण करें, और अपना शुद्धिकरण करके हम भगवत धाम वापस जाएं। और शुद्धिकरण कैसे करें, इसके लिए भगवान ने भगवद गीता के तीसरे अध्याय के दसवें श्लोक में बताते हैं, सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पूर्ववाच्य प्रजापति अनेन अन्विष्ट काम दुख, कि इस सृष्टि की रचना के साथ भगवान ने यज्ञों की रचना की, और उन यज्ञों के द्वारा बताया कि आप कैसे कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं जिससे कि क्रमशः आपका शुद्धिकरण हो। तो यह भौतिक सृष्टि, और उस भौतिक सृष्टि में खासकर यह मनुष्य देह केवल शुद्धिकरण करने के लिए बना है। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दिस ह्यूमन बॉडी इज स्पेशली डिजाइन टू क्रॉस ओवर दिस मटेरियल ओशियन, ये ह्यूमन जो मनुष्य शरीर, ये केवल विशेष रूप से बनाया गया है कि हम इस भौतिक जगत में रहते हुए अपना शुद्धिकरण करें। और अपना शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं, अपना शुद्धिकरण इस भौतिक जगत की सामग्री का प्रयोग करके ही हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। श्री भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि पूरी की पूरी भौतिक सृष्टि क्या है, एक सामग्री है कृष्ण की पूजा के लिए। ये पूरी की पूरी जो भौतिक सृष्टि है, ये एक तरह से सामग्री है कि हम कृष्ण की पूजा कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी चींटी तक वो क्या समझते हैं प्रत्येक जीव, कि पूरी की पूरी भौतिक सृष्टि किस लिए है, मेरे भोग के लिए, मेरे भोग के लिए। एक पशु पक्षी पेड़ पौधे हर कोई ये सोच रहा है कि भगवान ने सृष्टि हमारे भोग के लिए की है, वस्तुतः ये सृष्टि हमारे शुद्धिकरण के लिए है। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, प्रत्येक वर्ग के जीव के लिए भगवान ने शुद्धिकरण का अवसर दिया है। भागवत में वर्णन आता है कि हर एक वर्ग जीव के अंदर तीन मुख्य त्रुटियां तो होती हैं। प्रत्येक वर्ग जीव मैथुन करना चाहता है, प्रत्येक बद्ध जीव मांस भक्षण करना चाहता है, प्रत्येक बद्ध जीव मदिरा पान करना चाहता है। इन तीनों के प्रति उसका प्राकृतिक आकर्षण है। तो ऐसे जीवों का भी शुद्धिकरण हो सके, इसीलिए भगवान ने हमारी इस गलत प्रवृत्ति के शुद्धिकरण के लिए अलग अलग यज्ञ रखे, किसी को मांस भक्षण करना है तो यज्ञ में वेदों में बताया गया है कि उनको जाकर अमावस्या के दिन बकरी को वहां ले जाना है, काली माता के सामने अपने पर इस कपड़े से उसको कवर करना है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे उसको भगवान को अर्पण करना है, काली माता को अर्पण करना है। जब वो ऐसा करेगा तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण हो जाएगा और उसके मांस खाने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। जिसको मदिरा दान करना है उसके लिए सौत्रमणि यज्ञ बताया गया है, उसमें बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं। बहुत अनुष्ठान करने के बाद जो यज्ञ करने वाले को कुछ थोड़ा सा मदिरा पान करने का अवसर मिलता है। जब बार बार इतना धन खर्च करके उसको थोड़ा सा मदिरा पान करने को मिलेगा तो बोलेगा क्या फायदा, तो वो उसके मदिरा पीने की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। और जिसकी मैथुन की बहुत इच्छा है उसके लिए विवाह एक यज्ञ है, और जो विवाह यज्ञ करेगा, विवाह में स्त्री और संतान जब उत्पन्न होगी उसका पालन पोषण करेगा, उनके लिए संघर्ष करेगा, और फिर उसको बोलेगा कि ऐसे विवाह का क्या लाभ, एक मैथुन की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं किन संकटों में फंस गया हूं, तो धीरे धीरे उसकी मैथुन की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। तो इस ढंग से धीरे धीरे क्रमशः शुद्धिकरण का अवसर दिया गया है। और इसके साथ मनुष्य समाज में कि सुचारू रूप से ये चलता रहे तो भगवान गीता में क्या कहते हैं, चातुर्वर्ण मय सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की ताकि सुचारू रूप से समाज चलता रहे। और इस वर्णाश्रम धर्म का केवल एक ही उद्देश्य है, संसिद्धिम हरि तोषणम, इस वर्णाश्रम धर्म के कार्यों के द्वारा हम भगवान हरि की संतुष्टि करें। भगवदगीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, यथा प्रवृत्तिर भूतानि येन सर्वम इदम ततम सकर्मण अभ्यचर सिद्धि विनती मानव, कि जब जो जिसने यथा प्रवृत्ति भूतानि जो भी सब भूतों के सृष्टि का कारण है, ये पूरी सृष्टि में जो सर्वव्यापक है, सकर्मण अभ्यचर है, तो हर कोई अपने अपने कर्मों से के द्वारा भगवान की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो वास्तव में ये किया जा रहा है कि जो हम अपने कर्म करते हैं उसको किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो हम घर में रहने वाली स्त्री है, कोई भी है, हम जैसा भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के पीछे उद्देश्य भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए। उस कार्य के पीछे उद्देश्य होना चाहिए भगवान की संतुष्टि। जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। ये मनुष्य जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल शुद्धिकरण करने के लिए है। हमारा प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। प्रत्येक क्षण को हमें इस तरह से प्रयोग करना है कि हमारा शुद्धिकरण हो, क्योंकि इस पूरी भौतिक सृष्टि की रचना ही केवल हमारे शुद्धिकरण के लिए की गई है, यही इसका उद्देश्य है। और अगर हम इस उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। तो शुद्धिकरण करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि भौतिक सृष्टि मेरे भोग के लिए नहीं है, ये भौतिक सृष्टि भगवान की सेवा के लिए है। तो जितना मैं भोग करूंगा उतना ही मेरा दूषीकरण होगा, और जितना मैं इसका त्याग करूंगा उतना ही मेरा शुद्धिकरण होगा। अब समझ रहे हो बात को, जितना हम इन भौतिक जगत में भोग की इच्छा करेंगे उतना हम दूषित होते जाएंगे और फंसते जाएंगे, और जितना हम इस भौतिक जगत में त्याग करेंगे उतना ही शीघ्र हमारा शुद्धिकरण होगा। तो कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि त्याग तो बहुत बड़ी बात है, त्याग तो बड़ा कठिन कष्टदायक है, लेकिन क्या कह रहे हैं ऋषभ भगवान कि जब हम त्याग करते हैं और हमारा शुद्धिकरण होता है, शुद्धिद अस्मात् ब्रह्म सुख्यम तुम अनंतम, जब हमारा शुद्धिकरण होगा तो हमें अनंत सुख की प्राप्ति होगी, अनंत सुख की। तो जो बुद्धिमान जीव है वो अनंत सुख को प्राप्त करना चाहेगा, और जो बद्ध और बुद्धू मूर्ख जीव है वो छोटे छोटे लाभ के लिए कोशिश करेगा, वो प्रेयस के पीछे भागेगा कि और इंद्र तृप्ति करूं, और इंद्र तृप्ति करूं, मैंने बिजनेस किया है, मैंने ये धन कमाया है, ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, इसको मैं भोगूंगा। जितना वो भोगेगा उतना वो दुखी रहेगा। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना है कि हम इस भौतिक सृष्टि में इस ढंग से रहें कि हम इसमें बधे ना। बहुत अच्छा कोटेशन है इंग्लिश में, वी शुड रिमेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बट वी शुड नॉट बी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। We have to remain in this material world, but we should not be of this material world. हम इस भौतिक जगत का होना नहीं है, भौतिक जगत में रहते हुए. तो कैसे? उसमें लिखा हुआ है कि उद्देश्य है भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए. वास्तव में देखा जाए भौतिक लाभ, ये शब्द अपने आप में बहुत ही विरोधाभासी है, क्योंकि लाभ कभी भौतिक हो ही नहीं सकता. इस भौतिक जगत में केवल हानि ही हानि है. प्रत्येक क्षण हम मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण हमारा नाश हो रहा है, तो लाभ कैसे हो सकता है? इस भौतिक जगत में हर चीज का अंत हो जाएगा. ऑल गुड थिंग्स अल्टीमेटली एंड, खत्म. आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना लीजिए, सब के सब समाप्त हो जाएंगे. मृत्यु सर्व हरस चाहम, और मृत्यु के समय भगवान सब हर लेंगे. तो सारी बड़ी बड़ी योजनाएं समाप्त, सारी आपकी LIC पॉलिसीज, NSCs, NIC, जो भी हम तरह तरह की सेविंग कर रहे हैं, जो जीव मर रहा है ये उसके लाभ के लिए है. बताइए बेचारा पूरा जीवन पेट काट काट के प्रीमियम भरता रहता है और अंत में मर जाएगा. कुछ भी नहीं, उसके परिवारजन कुछ लाभ उठाएंगे, वो तो खत्म. तो सारी की सारी योजनाएं हमारी विफल. तो एक बार राधा पारसाथी मंदिर में अल्फ्रेड फोर्ड आए हुए थे, अम्बरीश दास जी जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और जो कि हेनरी फोर्ड के पड़पोते हैं. तो किसी भक्त उनसे प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि प्रभुपाद जी के संपर्क में आप कैसे आए, कौन सी ऐसी बात थी जिससे आपका हृदय परिवर्तित हो गया? बहुत रोचक बात है. आप अल्फ्रेड फोर्ड जो कि बहुत ही धनवान है, तो उन्होंने कहा जब किसी भक्त ने मुझे इंट्रोड्यूस किया प्रभुपाद जी से कि ही इज अल्फ्रेड फोर्ड, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के जो मालिक थे, तो प्रभुपाद जी ने सीधा अल्फ्रेड फोर्ड की आंखों में देखा और कहा वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ, कि आप बताइए हेनरी फोर्ड इतने महान थे, अब वो कहां है? तो शुद्ध भक्त के मुख से जब ये वाक्य निकले तो अल्फ्रेड फोर्ड को जैसे धक्का सा लग गया, ये क्या है? अभी तक ना किसी ने प्रश्न उनसे पूछा था, ना कभी उन्होंने इस बारे में सोचा था. तो उनको ये लगा कि पूरा का पूरा जो मेरा साम्राज्य है इसका क्या लाभ? देखिए ना, पूरा का पूरा साम्राज्य इकट्ठा किया हेनरी फोर्ड ने, बोला जाता है कितनी बड़ी उपलब्धि की उसने, फोर्ड मोटर शुरू किया, ये किया वो किया, अब कहां है वो बताओ? क्या है, किधर है वो? पता नहीं किस योनि में होगा. तो जो साम्राज्य उसने खड़ा किया उसको तो वो भोग ही नहीं सकता, तो क्या लाभ? तो ये वचन सुनते ही अल्फ्रेड फोर्ड का, उस समय जो अल्फ्रेड फोर्ड के हृदय में परिवर्तन हुआ, और तब से मैंने ठान लिया कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वो सबका सब भगवान की सेवा में जाना चाहिए. उनके अंदर तो इतना वैराग्य आ गया, उन्होंने बोला प्रभुपाद मैं सब कुछ छोड़ के आपके मंदिर में आना चाहता हूं. तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, कि आपको भगवान ने ये सुविधा दी है, आपको इतना धन दिया है पीछे से, इसको भगवान की सेवा में लगाइए. इसलिए अल्फ्रेड फोर्ड, अम्बरीश दास जी, देखिए इस्कॉन में जो भी वो कमाते हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए. मायापुर प्रोजेक्ट में उन्होंने करोड़ों करोड़ों डॉलर्स दिए हैं, तो वो भी व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन सीधा भगवान की प्रसन्नता के लिए. तो जितनी मात्रा में हम अपने कर्म फलों का त्याग करेंगे उतनी ही मात्रा में हमारा मन संतुष्ट होगा. देखिए समझने का प्रयास कीजिए, हम जो व्यवसाय भी कर रहे हैं, जो कर्म फल के रूप में धन अर्जन कर रहे हैं, इस धन के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है. किस रूप से हम कह सकते हैं कि ये मेरा बैंक अकाउंट है? किस रूप से आप बताइए कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं आप? भगवान साफ साफ कह रहे हैं ईशावस्य इदम सर्वम, ये सब का सब मेरा है. तेल प्रत्यन भुंजिता मा गेदा कसे सिद्धनम, और ये सब का सब मैं इसका मालिक हूं, और तेल प्रत्यन भुंजिता हरेक जीव को मैंने भोगने के लिए कुछ कोटा दिया है बस, और जो इस कोटा से बाहर जाएगा मां गेदा कस्य सिद्धनम, वो दूसरे के धन को चुरा रहा है. तो अगर हम अननेसेसरली हम बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं कि अब मेरी फैक्ट्री इतनी बड़ी है, अब मैं उसको एक्सपेंड करूंगा, फिर मेरे पास छोटी गाड़ी है, फिर मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, फिर बड़ा बंगला बनाऊंगा, फिर मैं जाके विदेशों में भी एक बंगला लूंगा, और سوئس بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولوں گا. یہ جو بڑے بڑے پلانس بنا رہے ہیں, اور تھوڑا سا اگر کوئی بھکت آئیں گے دے دیں گے دان, تھوڑا سا چیک کاٹ کے دے دیں, تھوڑا سا دان بھی دے دیں گے. تو ٹھیک ہے, کچھ دان دینا بالکل نہ دینے سے تو شریشٹھ کر ہے, لیکن اس سے ہمارا من پورن روپ سے سنتشٹ نہیں ہوگا. اور جو دھن ہم نے اپنے اور اپنے پریوار کے بھوگ کے لیے پریوگ کیا, اس کا ہمیں بہت بڑا ریئیکشن اٹھانا پڑے گا, کیونکہ وہ چوری ہے, انلیگل ہے, انلیگل اویدھ ہے. وہ بھگوان کا ہے, سپریم گورنمنٹ کرشن کا ہے. وہ ہمارا کوئی ادھیکار ہی نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی ادھیکار نہیں ہے. تو اس کو ہمیں سوتہ ہی کرشن کو ارپن کرنا چاہیے. تو جتنی ماترا میں ہم بھگوان کو اپنا کرم فل ارپن کریں گے, اتنی ہی ماترا میں بھگوان ہمیں سنتشٹی دیں گے, اپنی کرپا دیں گے. اور یہ سوچتے ہوئے ہمیں بھکتوں کے پرتی بہت ہی کرتجھ ہونا چاہیے, بہت ہی ان کے پرتی ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ رکھنا چاہیے کہ بہت بہت دھنیواد, آپ نے مجھے اب میرے دوشیکرن سے, مجھے پاپ میں جانے سے بچا لیا, کیونکہ یہ جو دھن میں اپنے لیے بھوگ میں لگاتا آپ کی کرپا سے میں اس کو بھگوان کی سیوا میں لگا پا رہا ہوں. تو بھکت ہیں وہ بھگوان کے ایجنٹ ہیں, وہ ہنومان جی ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, لکشمی کو راون سے نکال کر رام کے پاس واپس لا رہے ہیں. تو کوئی بھی بھگ جی, ہم سب منی راون ہیں, ہمارے 10 مکھ تو نہیں ہیں, لیکن ہم سب چھوٹے چھوٹے راون ہیں, چھوٹے موٹے چھوٹ پٹ ٹینی منی راونز ہیں. تو ہم چھوٹا موٹا سوچتے ہیں, پلان بناتے ہیں. راون نے پلان بنایا تھا کہ لنکا کا تک میں سیڑھی سورگ تک سیڑھیاں بناؤں گا. ہمارا بھی کوئی پلان ہے, امریکہ تک سیڑھیاں بنائیں گے یا کچھ کریں گے, کچھ نہ کچھ ہمارے پلانس چلتے رہتے ہیں. تو ہم بھی راون ہیں. تو جب کوئی بھکت ہمارے پاس آتا ہے تو ہنومان کا روپ لے کے آتا ہے, تو وہ بہلا کے پھسلا کے, وہ لنکا جلائے گا تو نہیں آپ کی, لیکن کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو بولے گا کہ آپ یہ کرو, پانڈو ممبر بنو, لائف ممبر بنو, جنماشٹمی کے لیے دان کرو, مندر کے لیے دان کرو, ٹیچنگ کے لیے دان کرو. تو کچھ بھکت دے دیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے میں نے دان دیا, تو ان کا اہنکار بھی بڑھتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن جو اچھے بھکت ہیں وہ بڑے کرتجھ انوبھو کرتے ہیں کہ ارے آپ نے مجھے ایک اوسر دے دیا, میں تو غلطی کر رہا تھا. بد جیو کا ایک لکشن کیا ہے, ٹو کمٹ مسٹیک. وہ غلطی تو کرے گا ہی کرے گا, پورن تو ہے نہیں وہ, کوئی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں, غلطی کرے گا ہی کرے گا. تو بھکت اس کے پاس آ رہے ہیں, اس کو اوسر دے رہے ہیں کہ غلطی مت کرو. یہ منشیہ جیون بہت درلبھ ہے, بہت درلبھ ہے. مرتیو ہم سب کے سر پر ناچ رہی ہے. کیا پلانس بنائیں گے ہم, کیا پلانس بنائیں گے؟ اصلی پلان بنانا چاہیے اس مرتیو کو ختم کر دیں, اس جنم مرتیو کے چکر سے چھٹکارا پا لیں. اسی لیے سارے کے سارے جو ویدک شاستر ہیں ان کا کیول ایک ہی ادیشیہ ہے کہ منشیہ کیسے اس بھوتی جگت سے اناسکت ہو جائے. سارے کے سارے ویدک شاستروں کا ایک ہی ادیشیہ ہے کہ ہم اس بھوتی جگت سے اناسکت ہو جائیں. تو اناسکت ہونے کے لیے, ڈیٹیچ ہونے کے لیے ہمیں کرم فلوں کو بھوگنا نہیں پڑے گا, کرم فلوں کو ارپن کرنا پڑے گا. اسی لیے ہمیں یوجنائیں ایسی بنانی ہیں جس سے ہم اس بھوتی جگت میں اور پھنسے نہ, بٹ وی شوڈ میک پلانس فار گیٹنگ ڈس اینٹینگل فرام دس مٹیریل ورلڈ. ہمیں ایسے پلانس بنانے چاہیے کہ میں اس بھوتی جگت سے چھٹکارا پا سکوں. ہمیں ایسے پلانس نہیں بنانے چاہیے کہ اس میں بھوتی جگت میں اور دھستا چلا جاؤں, اس اندھے کنویں میں اور گرتا چلا جاؤں. ہمیں ایسے پلانس بنانے چاہیے کہ میں اس اندھے کنویں روپی بھوتی جگت سے باہر نکل سکوں. اور یہ یوجنا کیول ہم منشیہ شریر میں ہی کر سکتے ہیں. کتا, بلی, پشو, پکشی یہ یوجنائیں نہیں بنا سکتے. تو کتنا کر کے سمجھنے کا پریاس کیجئے کہ ہمارے ہر ایک پریاس میں یہ ہونا چاہیے کہ کس روپ سے میں آگے بڑھوں, کرشن کی طرف جاؤں. اب کچھ لوگ اپنے کرم فلوں کا تیاگ سماج سدھارک سنستھاؤں میں دیتے ہیں, کسی ایک بچے کو سپانسر کر دیتے ہیں, کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں. تو کیا اس سے بھی ہمارے من کو سنتوشٹی ملے گی؟ ملے گی سنتوشٹی؟ آپ میں سے کیا لوگ, اس سے بھی ہمیں سنتوشٹی نہیں ملے گی, کیونکہ وہ بھی دیکھا جائے تو یہ اندر تپتی ہے ایک طرح سے. تو اگر آپ غریبوں کو کھانا کھلا کر اور کسی بچے کو سپانسر کر کر بھگوان شری کرشن کو چیلنج کر رہے ہو کہ یہ بھگوان تمہیں مورکھ ہو, تمہیں معلوم ہے نہیں وہاں جھگی جھونپڑی میں کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رکھا ہے آپ نے, آپ کو پتا نہیں وہ لوگ بچے غریب مر رہے ہیں بےچارے, اتنے بیمار ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, دیکھو میں نے کھانا کھلایا ان کو, آپ کس طرح سب کے پالن کرتا ہو بتاؤ, ان کا تو پالن کر نہیں سکتے, میں ان کو پال رہا ہوں, آئی ایم اسپانسرنگ تھری چائلڈرن. دیکھ سی ہم لوگوں کے پاس دان لینے جاتے ہیں تو اپنے آفس کے ڈرار میں سے نکالتے ہیں, دکھاتے ہیں, دیکھو کرائی کا کارڈ ہے, آئی ایم اسپانسرنگ 3 children. بہت اچھا لگتا ہے, کہتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں, بچوں کو دیکھتے ہیں, ہمیں بڑی سنتوشٹی ہوتی ہے. سنتوشٹی نہیں ہوتی, ہمارا جھوٹا اہنکار بڑھتا ہے, اور کوئی سنتوشٹی نہیں ہے, اور اس سے ہمیں کبھی بھی من کی شانتی نہیں مل سکتی, کیونکہ یہ کر کے ہم بھگوان کے پلانس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. ہم صاف صاف بھگوان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہو ہی نہیں, یا تو ہو نہیں, یا ہو تو سرگیاتا نہیں ہو, اگر سرگیاتا ہو تو کرونا میں نہیں ہو, یا کرونا میں بھی ہو سرگیاتا ہو تو شکتیشالی نہیں ہو ان کا پالن کر سکو, جبکہ بھگوان سرو شکتی مان ہے, سرو گیاتا ہے, سرو کرونا میں ہے. تو ہمارا کوئی ادھیکار نہیں ملتا ایک تجھ سے بد جیو کا کہ وہ پرم پروشوتم ترلوکی ناتھ سر لوک مہیشور کے بھگوان کے پلانز میں یوجناؤں میں کچھ آڑے آئے. تو ہمیں بھگوان کی یوجناؤں کو سمجھنا ہے, اور بھگوان کی یوجناؤں کے انوسار بھگوان کو ہی سب کچھ ارپن کرنا ہے. اب شری پرپا جی یہاں پہ بہت ہی سندر بات لکھ رہے ہیں کہ ایک براہمن کو تو وشیش کر کسی بنا بھوتک لابھ کے کارے کرنا چاہیے, وشیش کر براہمن کو. تو دیکھا جائے شری پرپا جی نے جب اسکان کی استھاپنا کی تو ان کا یہ ادیشیہ تھا کہ سماج میں براہمن بنائے جائیں. تو آپ سب بہت ہی سنسیئر بھکت ہیں, آپ کافی سمے سے پروپا جی کے آندولن میں جڑے ہیں ہم سب. تو اگر ہم دکشت ہیں یا نہیں ہیں, یا براہمن دکشت ہیں, اس کا کوئی اتنا فرق نہیں ہے. واستو میں دیکھا جائے پروپاد ہم سب کو براہمن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. براہمن کا ارتھ ہے جو بھگوان کے وشے میں جانتا ہو اور بھگوان کے وشے میں گیان دے رہا ہو. اور آپ سب کچھ نہ کچھ ماترا میں پرچار کر رہے ہیں, جو بھی آپ کے سمبندھ میں آتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرشن سے جڑے. تو دیکھا جائے تو ہم سب براہمن کا رول نبھا رہے ہیں, کچھ کم کچھ زیادہ. تو پربھوپاد جی کی ہم سے یہ وشیش آشا ہے کہ ہم لوگ جو بھی کاریہ کریں بنا کسی بھوتک لابھ کے کریں. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے بد جیو کے کارن ہماری ایسی بدھتا ہو گئی ہے کئی کئی جنموں کی کہ ہم بھکتی میں بھی آتے ہیں تو پرکرتی کے 3 گڑوں کے پربھاؤ میں رہتے ہیں. جیسے کل بھی اس گریس ماخالن پربھو چرچا کر رہے تھے کہ ہم بھکتی بھی کر رہے ہیں پرکرتی کے 3 گڑوں کے ادھین ہو کر. تو یہ ہم دیکھنا ہے, اس کی ہم تھوڑی سی چرچا کریں گے کہ کس طرح سے, حالانکہ بھکتی تو ایک ہی ہے, شدھ بھکتی تو ایک ہی ہے, لیکن جیو کی استھتی کو دیکھتے ہوئے یہ الگ الگ روپ سے پرتیت ہوتی ہے. تو بھگوان کپل نے اس بھکتی کے وگیان کے وشے میں ماتا دیوتی کو بہت وستار میں بتایا, اور انہوں نے بتایا کہ کیسے تمو گن میں, رجو گن میں, ستو گن میں اور شدھ بھکتی اس کے کیا الگ لکشن ہیں. تو بہت ہی روچی کر رہے ہیں, اس کو دھیان سے سنیے. لیکن سننے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی چیتاونی دے رہا ہوں کہ سننے کا ہمارا لکش یہ نہیں ہے کہ جب ہم تمو گن کی بھکتی کو سنیں گے تو دیکھیں دیکھو وہ کر رہا ہے تمو گن میں بھکتی اور رجو گن کی بھکتی, یہ دیکھو یہ ویکتی تمو رجو گن میں بھکتی کر رہا ہے, یہ ستو گن میں بھکتی کر رہا ہے اور میں شدھ بھکت ہوں. کرپا کر کے ایسا نہیں کرنا. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں اپنے اولوکن کے لیے ہے, ہمیں یہ کسی کو جج کرنے کے لیے نہیں بتا رہے. آپ دیکھیں گے کہ ہم سب میں گن مشرت ہیں, دھیرے کچھ کچھ تمو گن کے, کچھ رجو گن کے, کچھ ستو گن کے. تو ہمیں اپنے شدھیکرن کے لیے, اپنے انٹروسپیکشن اولوکن کے لیے دیکھنا ہے, کیونکہ ہم سب کو براہمن بننا ہے پورن روپ سے 100%. تو کپیل بھگوان بتا رہے ہیں کہ تمو گن میں جو بھکتی ہوتی ہے اس کے کیا لکشن ہیں. میں کیول انواد پڑوں گا, سمے کم ہے. بتا رہے ہیں کہ جو ویکتی بہت دویشی ہے اور بہت ابھیمانی ہے, اس کو اپنی پرسنالٹی کا, اپنی استھتی کا بہت گرو ہے, ابھیمان ہے, بہت ہنسک ہے, وائلنٹ اور اینگری, بہت ہی کروز میں رہتا ہے, اور جو پتھک وادی ہے, پتھک وادی یعنی کہ اس کی اچھائیں بھگوان کی اچھاؤں سے بالکل الگ ہیں, تو ایسے جو بھکتی ہوتی ہے وہ تمو گن میں بھکتی ہوتی ہے. کیا کیا ہے؟ جو دویشی ہے, گھمنڈی ہے, ہنسک ہے, غصے میں رہتا ہے اور پتھک وادی ہے, اس کی اچھائیں بھگوان کی اچھاؤں سے بالکل الگ. بھگوان چاہتے ہیں کہ سب دھرموں کو چھوڑ کر میری شرن میں آؤ, وہ کہتا ہے کہ بھگوان تم میری شرن میں آؤ, تم میری سیوا کرو, میں تمہاری سیوا تھوڑی کروں گا, دیکھو میری یہ ڈیمانڈس ہیں, ابھی تک کچھ بھی پوری نہیں کی تم نے, کتنے سالوں سے میں مالا کر رہا ہوں, سب کچھ کروں, کیا کیا آپ نے میرے لیے؟ تو کہتے بھگوان تم میری سیوا کرو, بھکت لوگ تم میری سیوا کرو, جانتے نہیں میں کون ہوں, سماج میں میری کیا استھتی ہے, جانتے نہیں کتنے سمے سے میں 16 مالا کر رہا ہوں, خبردار جو مجھ سے بدتمیزی سے بات کی, یا دیکھ لوں گا اس کو, اس نے مجھے پرشاد سب سے لیٹ دیا, یا یہ آرتی دکھانے کے لیے اس کو پتا نہیں میں سینئر ہوں، یہ سب سے میرے بعد میں میرے کو آرتی دکھائی، میں بتاؤں گا اس کو جب مجھے موقع ملے گا. تو اس طرح کے جو بھاو ہیں دویش، گھمنڈ، غصہ، ہنسا، اپرتھم وادی، بھگوان کی اچھا جو مرضی ہو مجھے کوئی مطلب نہیں، تو ایسی بھکتی بھی ہے لیکن بھکتی بھی کر رہا ہے، تو ایسی بھکتی تمو گنی بھکتی ہے. اس کے بعد ہے رجو گن. رجو گنی بھکتی ایسی ہے کہ جو مندر میں ارچ وگرہ کی پوجا کرتے ہیں لیکن ہے وہ بھی پرتھک وادی، اور اس کا کیا ادیش رہتا ہے کہ مجھے بھوتک بھوگ پراپتی ہو اور مجھے یش ملے، مجھے ایشور ملے. تو بھگوان کے ارچ وگرہ کی وہ پوجا کرتا ہے، مندر میں آتا ہے اپنے بھوگوں کی بردھی کے لیے، اپنے یش کے لیے اور اپنے ایشوروں میں بردھی کے لیے. تو ایسا جو بھکت ہے وہ ہے رجو گن میں. تو ایسے بھکت کا من کبھی بھی شانت نہیں رہ سکتا، ہمیشہ اتیجت رہے گا کہ اب یہ چاہیے، اب مجھے اور چاہیے، اب یہ مل گیا اب مجھے اور چاہیے، میرا یش اور پھیلنا چاہیے، سب لوگ میری واہ واہ کریں کہ کتنا سندر پرورچن، کتنا اچھا کیرتن، کتنے اچھے شلوک بولتا ہوں، چاروں طرف میرا گنگان ہونا چاہیے اور میرا ایشوریہ پھیلنا چاہیے. میں پرچار میں جاتا ہوں تو پرانی گاڑی میں جاؤں گا میں بس نئی گاڑی، بڑھیا سی گاڑی ہونی چاہیے اور ایک اچھا ڈرائیور ہونا چاہیے آگے سے، اور میرے وستر بڑھیا مٹکا سلک اور بڑھیا سا آبھوشن ہونے چاہیے. تو سندر سندر بڑھیا سے رجو گن ایشوریہ میرا ہونا چاہیے کچھ. تو یہ جو بھکت ہے یہ رجو گنی بھکت ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کو لگے گی کہ تو ان کو کیسے معلوم چل گیا میری اچھا ہے. ہم سب کے اندر یہ اچھا دبی ہوئی ہیں، یہ بھگوان بتا رہے ہیں کپل بھگوان. اس کے بعد ستو گنی بھکتی کیسے ہے کہ جب کوئی بھکت بھگوان کو پوچھتا ہے اور اپنے سارے کاریوں کا پھل بھگوان کو ارپن کر دیتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر یہ اچھا ہے بھگوان کو کرنے کا پھل اس لیے ارپن کر رہا ہے کہ اب میں اس بھوتک بندھن سے چھٹکارا پایا ہوں، کرم پھلوں سے بچ جاؤں گا. تو اس کا جو بھکتی ہے وہ ستوگنی بھکتی ہے. تو ستوگنی بھکتی بھی شدھ بھکتی نہیں ہے، کیونکہ شدھ اس کے اندر ابھی بھی اچھا ہے کہ میں کرم پھل دے رہا ہوں تو ان کرم پھلوں سے میں بچ جاؤں گا. لیکن جو شدھ بھکتی کیا ہوتی ہے، انیہ ابھیلاشتا شونیم، اس کے اندر کوئی بھی ابھیلاشا نہیں رہتی، کوئی بھی ابھیلاشا، کیول شونیہ. جیسے چیتن مہاپرو کیا کہہ رہے ہیں، نہ دھنم نہ جنم نہ سندرم کویتام وا جگدیش کامیے مم جنمنی جنمنیشورے بھوتاد بھکتی اہے تو کی توئی. کہ نہ مجھے دھن چاہیے، نہ مجھے جن چاہیے، نہ مجھے سندر استری چاہیے، نہ مجھے ششیہ چاہیے، نہ مجھے گنگان چاہیے، مم جنمنی جنمنیشوری، میرا بابر جنم بھی ہوتا رہے. یعنی کہ چیتن مہاپرو پرارتھنا کر رہے ہیں کہ مجھے مکتی بھی نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے، بھوتاد بھکتی اہیتو کی توئی، مجھے کیول آپ کی اہیتو کی بھکتی چاہیے. اہیتو بھی مطلب سیلف لیس، میرا کوئی بھی اس میں ہیتو چھپا ہوا نہ ہو، کیول 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 کرشن کی پرسنتا کے لیے ہی میں کاریہ کروں. بس یہی منشی جیون کا لکشیہ ہے کہ کیول کرشن کی پرسنتا، کیولا بھکتی، اور کوئی میری چھپی ہوئی اچھائیں نہیں ہونی چاہیے. یہی شدھ بھکتی ہے. اور جب ہم ایسی بھکتی کریں گے تو بھگوان گیتا بھاگوتم کے پہلے اسکند میں بتایا جا رہا ہے، سارے پنسا پرو دھرما یتھا بھکتی ادوکشجے اہیتکی اپرتیہتا یاتما سوپرسدتی. جب ہم ادوکشج کی بھکتی کریں گے اہیتکی، بنا کسی کارن کے، اپرتیہتا بنا کسی رکاوٹ کے، یاتما سوپرسدتی، تب ہماری آتما کو پورن روپ سے سنتوشٹی ملے گی. تو واسطو میں دیکھا جائے اس طرح کی بھکتی کرنا کوئی ہمارا ادیشیہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی بھکتی ہماری واسطوک استھتی ہے. اہیتو کی اپرتیہتا بھکتی ہماری واسطوک استھتی ہے، یہ جیواتما کی واسطوک استھتی ہے. جیور سروپے ہوئے کرشن نتیہ داس، نتیہ اٹ مینس آلویز، نرنتر، جیسے یہاں بھی لکھا ہے نتیہ نراشی، نتیہ ہمیشہ. تو اپرتیہتا ہو گیا اور اہیتو کی، آتما کا کوئی اپنا کچھ کوئی اس کا ادیشیہ نہیں ہے، اس کا ایک ہی ادیشیہ آتما کا کہ جس کے لیے اس کو بنایا گیا، یعنی کہ کرشن کو آنند دینا. तो ये हम सबकी वास्तविक स्थिति है और हम इसको सबको प्रयास कर रहे हैं। ये मनुष्य देह मिला ही इसीलिए है कि हम धीरे 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 अपने को इस स्थिति में लाए। हो सकता है अभी हम कुछ समय तमोगुण में भक्ति करते हो, कुछ हमारे अंदर रजोगुणी भक्ति के लक्षण हो, कुछ सतोगुणी भक्ति के लक्षण हो, तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। हम लगे रहे और बुद्धि के स्तर पे आकर प्रयास करते रहे कि कैसे मैं अपने आप को इन तीन गुणों से ऊपर उठाऊं, तो हम भी प्रभुपाद जी और वैष्णव की कृपा से शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ सकते हैं। ये कोई इतना कठिन नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि शुद्ध भक्ति करना इतना कठिन नहीं है। एक शुद्ध भक्ति वाणी है कि शुद्ध भक्ति करना कठिन नहीं है। अगर शुद्ध भक्ति करना कठिन होता तो फिर लाभ ही क्या है? तो भक्ति तो प्रैक्टिकल है ना। और श्री प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस इज वेरी सिंपल, भक्ति करना बहुत सरल है, कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत सरल है और अपने घर वालों को समाज वालों को प्रसन्न करना असंभव है। आप सबको अनुभव होगा कि हम जितना मर्जी त्याग कर लें अपने परिवार वालों के लिए, अंत में क्या सुनने को मिलता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है और जो कुछ भी किया इसमें आपका लाभ था? तो वास्तव में होता ही है, हमारा कुछ ना कुछ आपका कर्तव्य था, ये तो किया ही आपने। क्या हो गया? आपने पढ़ा बड़ा कर दिया, आपने ऋण लेके मुझे पढ़ाया लिखाया, क्या हो गया? सब कर रहे उनके लिए, माता पिता उसने बच्चे को कॉलेज में इतनी बड़ी गाड़ी ला दी, मैं अभी तक साइकिल में धक्के खा रहा हूं, क्या किया आपने मेरे लिए? तो जाने बोलते हमने क्या क्या नहीं किया, बोले कुछ नहीं किया। हर किसी को यही शिकायत है कि आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तो वही सेवा, वो सारे के सारे प्रयास अगर हमने कृष्ण के लिए किए होते तो कृष्ण इतने कृतज्ञ नहीं है। भागवत में बताया गया है कि कृष्ण के लिए हम रेत के समान सेवा करते हैं तो कृष्ण उसको सुमेरु पर्वत के समान लेते हैं, और भौतिक वाणियों के लिए हम सुमेरु पर्वत समान सेवा करते हैं तो उसको रेत के समान लेते हैं। तो अपने जीवन को व्यर्थ क्यों गवाएं? हम क्यों गवाएं व्यर्थ? बाद में ये नहीं मिलेगा। अभी जो हमारे साथ परिवार वाले हैं कुछ समय के लिए है, फिर अलग हो जाएंगे, सब अलग अलग चले जाएंगे, फिर नए परिवार वाले आ जाएंगे। जो हमारे जीवन में अभी पत्नी है जिससे हम इतना लगाव करते हैं, अगले जन्म में किसी और की पत्नी होगी। अभी सोचकर हमें ये कैसे हो सकता है? होगा ऐसा? होगा ही होगा, आप कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो। आप किसी और की पत्नी बने हुए, पति बने हुए, पता नहीं क्या होंगे, फिर उनके साथ असक्त हो जाएंगे। तो ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। कृष्ण के साथ हमारा संबंध बहुत गंभीर है। तो हमारी ये योजना होना चाहिए कि कैसे मैं इस भौतिक जगत से अनासक्त हूं। जिस ढंग से एक व्यक्ति जो ट्रेन में जा रहा है, तो ट्रेन में जा रहा व्यक्ति चाहे वो जनरल क्लास में हो, धक्के भीड़ में फंसा हुआ हो, या एसी कंपार्टमेंट में हो, वो क्या सोचता रहता है कि कब मेरा डेस्टिनेशन आएगा, कब मेरा लक्ष्य आएगा? फटाफट वो जैसे ही आने लगता स्टेशन, 5-10-15 मिनट पहले ही सब पैकिंग करके तैयार होता है गेट पे, कभी फटाफट उतरू यहां से। उसी ढंग से ये भौतिक जगत एक यात्रा के समान है, एक यात्रा है ये जीवन। इसको हमें, इसको रहना नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि फर्स्ट क्लास एसी में बहुत कंफर्ट्स हैं, टीटी के पास जाके थोड़ा बढ़ा दो ना आगे ट्रेन जर्नी, क्या फर्क पड़ता है सर, इतना आनंद आ रहा है। दिल्ली से थोड़ा आगे ले जाओ, गाजियाबाद थोड़ा और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, खूब पैसा मेरे पास, बढ़ाओ आगे, आगे बढ़ाओ। नहीं, चाहे वो एसी में हो या सेकंड क्लास में हो या जनरल कंपार्टमेंट में हो, उसका यही उद्देश्य होता है फटाफट समाप्त हुए यात्रा और मैं कब उतर के अपने घर जाऊं, घर जाऊं। आजकल तो मोबाइल फोन आ गए हैं, आधा घंटे पहले वो फोन कर देते हैं पत्नी को, आने वाला हूं, सब ठीक है, स्टेशन पे पहुंच जाना, खाना तैयार रखना, सब पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। इसी ढंग से हमें भी उत्साहित होना चाहिए कि जीवन कब, ये कब समाप्त होगा, अब चाहिए खत्म करें इसको फटाफट, डिस्टर्बल ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, सरल जीवन रखें। अगर भगवान की कृपा से हमें कुछ धन प्राप्त हो रहा है, मेरा नहीं है, भगवान आप ही लो, मैं नहीं फंसना चाहता इसमें, मैं फंस जाऊंगा, जो प्राप्त है सब आपका है, प्रसाद के रूप में दे दीजिए, मैं अपने परिवार के शरीर के पालन के इतना चाहिए, बस सरल जीवन। और भगवान जो मुझे धन दे रहे हैं, आप आपकी कृपा है, मुझे माध्यम बना रहे हैं, ये लीजिए वापिस, तेरा तुझको अर्पण लीजिए। और फिर प्लानिंग करनी चाहिए, पति पत्नी को मिलकर, दोनों को डरना नहीं चाहिए। पत्नी को डर लग जाए, अरे अरे ये सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, सब कुछ को, आपको भी छोड़ना है, पत्नी को भी छोड़ना है, पति को भी छोड़ना है। हम जीव है, हमारा अस्तित्व कोई पति पत्नी नहीं है, जीवन स्वरूप है पति दास या पत्नी दास नहीं है, जीवन स्वरूप है भाई कृष्ण नित्य दास। इस जीवन में पत्नी का शरीर मिला है, इस जीवन में पति का शरीर मिला है, इस जीवन में अगले जीवन पता नहीं क्या होगा, तो हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो हमें भोगना नहीं है, हम दास हैं, हम सेवक हैं, कृष्ण वास्तविक भोगता है। तो जब तक हम ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसी योजनाएं नहीं बनाएंगे, तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन पूरे समाज की सृष्टि ऐसे है, बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फिर अमेरिका में सेटल होंगे, फिर बड़ी कोठियां लेंगे, फिर ये करेंगे, जो पिता अपने खुद पूरा नहीं कर सकता, वो सोचा था कि मेरा पुत्र ये सारा कर दे। मैं तो एक क्लर्क हूं, मैं तो धक्के खाता रहा टीटीसी की बसों में, मेरा बेटा तो मर्सिडीज में घूमे, तो उसके ये सपने होते हैं। तो सारे के सारे प्लान है इस भौतिक जगत में फंसने के लिए, देखिए ना, सारे प्लान इस भौतिक जगत में फंसने के लिए। हमारे माता पिता, दादा दादी, पूर्वज भी हमें यही प्लान बताते हैं कि इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा फंसा जाए, आशीर्वाद भी यही देते हैं कि खूब सुखी रहो, दूध नहाओ, पुत्र फलो, यही रहो, बस इसी भौतिक जगत में पड़े रहो, बस यही पड़े रहो, हजारों साल जियो और यही पड़े रहो, सरते रहो, इससे निकलना है बात। तो ये आज का श्लोक यही बताया गया है हमें कि हम पूरे के पूरे इस वास्तविकता को तथ्य तत्व से समझें कि वास्तव में सृष्टि की रचना भगवान ने क्यों की और इस सृष्टि में मेरा क्या रोल है और मेरा असली स्वरूप क्या है और किस ढंग से मुझे जीवन जीना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने भजन में कहते हैं, मानस देह गेह जो कुछ मोर अर्पण तुया पदे नंद किशोर, कि ये नंद किशोर जो ये देह दिया है, घर दिया है, संपत्ति दिया है, सब कुछ तुझको अर्पण, सब कुछ तुझको है, मुझे मारना है, मुझे रखना है, मुझे जो कुछ करना है सब कुछ तुम करो। अब देखिए, बलि महाराज जी के पास वामन देव जी जब गए तो वामन देव जी ने तीन पद में ही, दो पद में सब कुछ ले लिया, तीसरा पद रखने की जगह नहीं, तो बलि महाराज जी ने आत्मसमर्पण किया, अपना शीर्ष आगे कर दिया, तो भगवान ने अपना तीसरा पद बलि महाराज के शीर्ष पे रख दिया और उसके बाद भगवान ने उनको बंदी बना दिया। भगवान ने कहा तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया, बंदी बना दिया, और बलि महाराज का सर शर्म से झुका हुआ है। तभी बलि महाराज की बहन वहां पे आती है और वो बोलते हैं कि मेरा भाई कितना बड़ा मूर्ख है, ये सोच रहा है कि इसने अपना राज्य भी दे दिया, सब कुछ भी दे दिया और अपना शरीर भी अर्पण कर दिया, तो बहुत बड़ा दान दे दिया। अरे अगर इसने शरीर भी आपको अर्पण किया है तो ये शरीर भी इसका कहां पे है, ये शरीर भी भूमि आपो अनल वायु उन्हीं पांच तत्वों से तो बना है और ये पांच तत्व भगवान की बहिरंगा प्रकृति है, तो अगर उसने शरीर भी दे दिया तो इसका थोड़ी था जो आपको दे दिया, ये तो था ही आपका, समझ रहे हैं, जो शरीर भी उन्होंने अर्पण कर दिया वो कौन सा बड़ा दान कर दिया, ये भी तो आपका जो था, आपका पूरा अधिकार है इसके ऊपर, तो हम हैं क्या बताइए, कुछ भी तो नहीं है हमारा, ये भौतिक आवरण ऊपर वाला नहीं है हमारा, अंदर क्या है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, भगवान कहते वो भी मेरी भिन्न प्रकृति है, वो भी मेरे को दे दो, फिर उसके अंदर क्या बचा, आत्मा, बोले क्या है, मगर अंश जीव लोगे, वो तो मेरा अंश है, बताओ क्या बच गया, क्या बच गया बताइए, आत्मा भगवान का अंश हो गया, सूक्ष्म शरीर भगवान की प्रकृति और स्थूल शरीर भगवान की प्रकृति, क्या बचा बताइए, और हम लोग कहते नहीं नहीं मैं ही सब कुछ हूं, क्या हो आप, कुछ भी नहीं है हम। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से इस भौतिक जगत में एक एक कदम बहुत सावधानी से रखना चाहिए, क्योंकि इस कर्म से मेरा दुष्टीकरण तो नहीं हो रहा, ये मैं अपने लिए तो नहीं भोग रहा हूं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि गुरु के संरक्षण में रहते हुए हमें अपने कर्म फलों का त्याग भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद तीसरे स्कंद के तात्पर्य में समझा रहे हैं कि गुरु के संरक्षण में रहते हुए अपने कर्म फलों का त्याग भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हम बचे रहेंगे, फिर हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है और हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। आप हिस्ट्री देख लीजिए, अभी तक हम भोगते आए हैं तो दुखी रहे हैं, हमारे पूर्वज भोगते आए हैं दुखी रहे हैं, कब तक ये चलता रहेगा, कब तक, बुद्धिमान व्यक्ति को इसको यहां पे स्टॉप करना चाहिए, कब तक ये मैं भी दुख भोगता रहूंगा और सारा जगत दुख भोगता रहेगा, कब तक, मूल कारण हमें मालूम चल गया तो उसी प्रयास पे हमें लगना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? धीरे धीरे प्रशिक्षण देना चाहिए, प्रशिक्षण से ही काम चलेगा। और अगर हमारे माता पिता का चरित्र एकदम आदर्श है तो धीरे धीरे बच्चे भी समझ जाएंगे। जबरदस्ती नहीं कर सकते हम किसी पे, कृष्ण हमारे पे जबरदस्ती नहीं करते तो हमें भी उन पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, पर धीरे धीरे उनको प्रशिक्षण देते हुए और उनको बताते हुए उदाहरण देते हुए हम समझा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, समझ जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा उनको भक्तों का संग दें, उनको सेवा में उनको भी हम लगा सकते हैं। हाँ तो नहीं आप उनके इच्छा तो अज्ञानता है, तो अगर हम उनको दे भी रहे हैं साइकिल तो उनको बताना चाहिए कि इसका प्रयोग किस लिए करो, आप कैसे करना है बताना चाहिए। जैसे एक बार दे दिया, उसको उदाहरण दे दिया, इसको किया आपने, अब तुम साइकिल से एक साल दो साल के बाद तुम्हें क्या चाहिए, कुछ और चाहिए, तो ऐसे तुम करते रहोगे कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। तो समाज समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो समझ जाएंगे। अच्छा प्रश्न है कि दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, तो जब मांस मदिरा है तो बूंद बूंद पर लिखा पीने वाले का नाम ये मतलब है ना, तो मैं थोड़ी पी रहा हूं, मेरे तो भगवान ने ऊपर से लिख के भेजा कि ये पैक आपके लिए है तो पैक पैक पर लिखा पीने वाले का नाम तो ये देखिए माता जी, ये तो हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं ऐसा कहकर। भगवान ने तो बोल देते ना कि मदिरा मदिरा पर लिखा पीने वाले का नाम, बोल देते पूरा ही पक्के कर देते भगवान, हम जो कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अगर मदिरा पीनी है तो सौत्र मणि यज्ञ करके पीजिए। अगर वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, अगर आपका मतलब भगवान के नाम से मतलब कृष्ण के नाम से है, अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और अज्ञानतावश अभी खा पी भी रहे हैं तो कोई इतनी समस्या नहीं है, धीरे धीरे उनका छूट जाएगा अपने आप ही। अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम दे रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, उनके अंदर दवाई चली गई है, दवाई जाना शुरू हो गई है। उनको और भक्तों का संग दीजिए, उनको ये मत ये छोड़िए, उनको भक्तों के संग में लाइए ज्यादा से ज्यादा, तो वो जो खाते पीते हैं अपने आप छूट जाएगा। हम सबकी यही इतिहास है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कर रहे हैं, जैसे आपका प्रश्न है कि जो लोग भक्त हैं उनके लिए माला करना इतना मुश्किल हो जाता है, तो जो मदिरा मांस भक्षण करें उनके लिए माला करना कैसे आसान होगा, हो जाता है। ये मूवमेंट हिप्पी से शुरू हुआ, आप देखते थे प्रभुपाद जब गए तो भक्तों की कृपा से वो सोलह माला नहीं कर रहे, एक दो माला ही कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, एक दो माला करने दें, फिर यहां पे आएंगे भक्तों के संग में आए प्रसाद पाए तो शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा, अपने आप स्वतः उनके प्रति डिस्टेस्ट आ जाएगा इन सब चीजों के लिए, वो अपने आप इसको छोड़ेंगे। दुबरा बसा जी, हाँ ये दसवें स्कंद में मैं आपको बताऊंगा उसका पूरा। ये पूछ रहे थे कि वो श्लोक कहां पे है जिसमें मदिरा पान मैथुन और मांस भक्षण का यज्ञ लिखा होगा। यस माता जी, धर्म जन्म मीन्स लोग फॉलोअर, जन जन कि मेरे शिष्य मेरे पीछे लोग चलते रहे, वो जन न धनम न जन, जन्म है बेसिकली संस्कृत में ऐसे, जन्म का मतलब जन्म नहीं है, जन्म जन्म जन चाहिए, फॉलोअर्स नहीं, नहीं नहीं वो नहीं है, वो मतलब नहीं है उसका, फॉलोअर्स है। हाँ प्रभु जी विजय जी, हम अपने मनुष्य सारे बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर हम अपूर्ण रूप से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में लग जाएंगे तो हमारा जो कर्तव्य है माता पिता समाज के प्रति वो पूरा नहीं होगा, तो क्या ये ठीक है? यही प्रश्न है ना दूसरी भाषा में। ठीक है, आपका प्रश्न समझ गया। देखिए, मैंने ये बात नहीं की कि हमें भगवान की शरण में इसलिए जाना चाहिए कि हमें अपने संबंधियों से सुनना पड़ता है कि आपने हमारे लिए किया है क्यों, ये बात नहीं है। अगर वो ना भी सुनाए, अगर वो ये भी कहें कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, मैं आपका एहसान कभी भूल नहीं सकता, अब मैं आपका दास बन के रहूंगा, अगर कोई ऐसा भी कहे तब भी पूर्ण नहीं है, तभी हमारे को संतुष्टि नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा स्वरूप नहीं है ये, हम किसी जीव के दास नहीं है, हम कृष्ण के दास हैं, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जब हम अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जाएंगे तभी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। और फिर भागवतम में एक श्लोक आता है कि प्रत्येक मनुष्य के अलग अलग तरह के ऋण हैं, जैसे माता पिता के प्रति ऋण, ऋषियों के प्रति ऋण, देवताओं के प्रति ऋण। तो माता पिता के प्रति जो ऋण है वो हम पूरा कर सकते हैं संतान की उत्पत्ति करके, ऋषियों के प्रति जो ऋण है वो हम पूरा कर सकते हैं शास्त्रों का अध्ययन करके और ब्रह्मचार्य का पालन करके, देवताओं के प्रति जो ऋण है वो हम पूरा कर सकते हैं अलग अलग यज्ञ करके। लेकिन बताया गया जो मुकुंद के चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है वो सभी तरह के ऋणों से मुक्त हो जाता है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हम सभी तरह के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके हम केवल अपना ही उद्धार नहीं कर रहे बल्कि पूरे समाज का उद्धार कर रहे हैं, पूरे समाज का। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी इज द बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी, बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है वो समाज का सबसे बड़ा हितैषी है। कैसे? इमीडिएटली जैसे ही वो कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो भगवान भागवत में बता रहे नरसिंह भगवान कि उसकी तो 21 पीढ़ियां तो वैसी तर जाती है। तो जिस परिवार के लिए हम इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमें मालूम नहीं, हम तो सेक्रीफाइस करके खुद भी नरक में जा रहे हैं, उनको भी नरक में ले जा रहे हैं अज्ञानता के कारण। लेकिन अगर भगवान के भक्त बनते हैं तो हम भी धाम में जाएंगे और हमारी 21 पीढ़ियां तरेंगे, ये तो छोटा सा काम हो गया। उसके बाद जो भगवान का भक्त त्याग करता है उसके त्याग से पूरे विश्व का उद्धार हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो जाता है। उदाहरण के लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष की आयु में जो त्याग किए, 70 वर्ष की आयु में वो अमेरिका गए और इस शास्त्रों को लिखा, इतना प्रचार किया, अब उनके इस त्याग से अगले 10,000 वर्षों तक ये कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन चलेगा। देखिए, अगर श्रीला प्रभुपाद सोचते 70 वर्ष की आयु में हूं, माई वृंदावन में बैठ के जप करता हूं, मेरा तो उद्धार हो ही गया, कोई एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं थी, चुपचाप उद्धार होता, चुपचाप धाम चले जाते, कोई उनको कुछ बुरा ना कहता, लेकिन वो गौर उनके इस त्याग से कितना बड़ा भला किया। आज उनकी कृपा से हम यहाँ पे हैं सब, हम सबको मालूम है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, नहीं तो हम भी अंदर कुएं में पड़े हुए थे। हम सबको एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि हम जीवन के अपने इस मनुष्य उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकते हैं, मनुष्य के उद्देश्य को। तो उनके इस त्याग से कितना बड़ा लाभ हुआ, आगे आने वाले 10,000 वर्षों तक चलेगा। तो इसलिए जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो लाभ ही लाभ है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल ऑस्पिशियस। और दूसरा, ये कहने का अर्थ नहीं है कि जब हम भक्ति में जुड़े हैं तो मेरी इस बात को गलत मत दीजिए कि हम पत्नी या पति को कुछ समझे ना, माता पिता को कुछ समझे ना, उनसे हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें कि तुम हो कौन, पता नहीं क्या अगले जन्म में बनोगे तो मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूं, चले जाओ यहां। ऐसा नहीं, हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना, हृदय को मजबूत करना है, स्ट्रांग करना है, कठोर नहीं करना। जो हमारा कर्तव्य है उनको हम पूरा करते रहें, लेकिन हम वास्तविक अपने उद्देश्य को कभी ना भूलें कि वो हमें कृष्ण की शरण ही ग्रहण करनी है।
हाँ, ادھر رسم کی جگہ کیوں کر دو؟ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وہ دان کرو. اب کسی پسند ہے ان کو 150 کی جگہ ہمیں 150 کی جگہ آپ مجھے بہت دان کے لیے خرچی کر پاؤ، ان لوگوں کو کیسے مجھے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے؟
گودان تو بہت اچھا ہے، گائے کے لیے دان کرنا تو ٹرانسڈینٹل ہی ہے، وہ کرموں کے پھل میں نہیں باندھے گا آپ کو. لیکن یہ ان کے پرکارن، اگر جو ویکتی فلاسفی نہیں سمجھتا تو مت سمجھاؤ فلاسفی، یہ ان کے ان پرکارن کسی نہ کسی طریقے سے ان کا بولو. جیسے کئی پرانوں میں، اسکند پران میں یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو سو گیتا کا دان کرتا ہے اس کو ویکنٹھ لوک کی پراپتی ہوتی ہے، تو وہ ساری اسٹیٹمنٹ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ گیتا کے دان میں کتنا بڑا دان ہے. تو یہ ان کے ان پرکارن کسی نہ کسی ڈھنگ سے بہلا کے پھسلا کے ہمیں اس کا بھلا کرنا ہے. اگر وہ فلاسفی سمجھا تو بہت اچھی بات ہے، فلاسفی نہیں سمجھتا تو انڈائریکٹلی کسی نہ کسی ڈھنگ سے کرنا ہے. بہت سے لوگ ملتے ہیں ایسے، لیکن اگر اس کے اوپر بھگوان کی کرپا ہوگی تو کرے گا. ہر کوئی بھی گیتا کے لیے دان نہیں کر سکتا، جس کے اوپر بھگوان کی وشیش کرپا ہوتی ہے وہی کرشن کی سیوا میں لگتا ہے. پریاس کر سکتے، نہیں لگا تو کوئی بات نہیں. تو بھگوان کے انش تو بھگوان پالن کریں گے نا. ہاں بھگوان نے آپ کو بتایا مادھیم ہے. میڈیکل سے نکلنے کے لیے تو یہی ہے، پرچار کرنا ہے ہم نے کسی نہ کسی مادھیم سے. کرشن پرساد کے روپ میں بھی مل جاتے ہیں، کرشن بکس کے شاستروں کے روپ میں بھی مل جاتے ہیں، دھام کے روپ میں بھی ہیں. کسی نہ کسی ڈھنگ سے جس میں ان کی روچی ہے ان کو ہم کرشن سے جوڑیں، پرساد سے جوڑیں، پستکوں سے جوڑیں، کیرتن سے جوڑیں، کسی نہ کسی ڈھنگ سے ہم ان کو کرشن سے جوڑیں. کا ادھار ہوگا یس لوگ پیپو اچھا پرشن ہے، ہم کیسے ان چلے گا کہ اس سیوا سے بھگوان پرسن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کون اتر دے گا اس کا؟ ہاں اگر گرو اور ویشنو پرسن ہو رہے ہیں تو بھگوان پرسن ہو رہے ہیں. ہمیں آگے دیکھنا نہیں چاہیے رادھیکا رمن جی اسمائل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میرا پیاز اپنے من سے بنا رہے ہیں، ہاں تو بہت زیادہ اسمائل کر رہے ہیں، بھگوان پرسن ہو گئے اور گرو آپ سے ناراض بیٹھے. ہاں بتائیے گرو جی آپ کا. کشمیر متی استو، آپ کے متی کشن میں لگ گئے، سب سے بڑا آشیرواد یہی ہے. شیلا پروپاد کے جو پتا جی تھے ان کے گھر میں کوئی بھی سادھو آتے تھے تو وہ یہی آشیرواد منگواتے تھے کہ کرپا کر ان کو آشیرواد دیجیے کہ رادھا رانی کا بھکت بنے. ان کی ماتا کہتی تھی کہ بیرسٹر بنے، یہ کرنے نہیں نہیں بولتے، نہیں ان کو یہ آشیرواد دو کہ ہم رادھا رانی کا بھکت بنے. سب سے اچھا دان ہے کہ ہم ان کو دیں جس سے یہ کرشنا بھانا بھوت کا پرچار ہو سکے. ویشنو کا دان کو دیا ہوا دان سب سے بڑا دان ہے. دروازے بھی منگے بھکت بھی آ سکتے ہیں، کرشن کے بھکت ہیں تو تلک ہے نا، تلک کنٹھی یہ ہے تو دے دیجیے. اب دوسرے دیکھنا پڑے گا کیا ہے، اگر وہ چانسز زیادہ ہی ہیں کہ وہ بونا فائڈ نہیں ہوں گے تو ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے یس ماتا جی آپ نے. بہت اچھی بات اٹھائی، یہ بڑا ایک یہ سٹل سبجیکٹ ہے، یہ ہر کسی کو نہیں. دیکھیے ماتا جی دھنیہ واد آپ کا یہ پرشن پوچھنے کے لیے. जो हमने गरीबों को अगर दान देना भी है, नहीं नहीं साथ में जो अगर हम किसी ऐसे असमर्थ व्यक्ति को दान दे भी रहे हैं तो वो दान कृष्ण प्रसाद होना चाहिए, कृष्ण प्रसाद होना चाहिए। जैसे एक बार कथा आती है, एक इंसिडेंट आता है, भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज अपने शिष्यों के साथ पुरी में गए, उनके गृहस्थ शिष्य थे, तो पुरी में काफी भिखारी उन गृहस्थ शिष्यों के पीछे पड़ गए, तो उन गृहस्थ शिष्यों ने उनको कुछ भी नहीं दिया, बोले दान देंगे इनको तो हम कर्म फल में फंस जाएंगे। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज हंस पड़े, बोले क्यों आप सोच रहे हो कि आप कर्म फल में फंस जाओगे, तो आप जानते नहीं जो आपने जो लक्ष्मी कमाया है ये भी भगवान का प्रसाद है, अगर आप इनको नहीं दे रहे हो ये तो इससे आपका हृदय कठोर हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति आपके पास आ रहा है बहुत गलत अवस्था में, असमर्थ अवस्था में, और आप उसको कुछ नहीं दे रहे तो आपका हृदय कठोर हो रहा है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, इसको अगर आज के हम कलयुग के परिपक्ष में देखते हैं, रेड लाइट्स वगैरह में जो हमें भिखारी मिलते हैं वो सब प्रोफेशनल है, एक पूरा का पूरा गैंग है, रैकेट है, उनके हाथ पैर काट के जबरदस्ती उनको भिखारी बनाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को हम धन देंगे तो हम ऐसे रैकेट को एनकरेज कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है, मैंने एक लेक्चर में सुना था एक महाराज जी के, कि हमें हमेशा अपने पास प्रसाद रखना चाहिए, बस सबसे उत्तम दान है ऐसे व्यक्ति को हम प्रसाद का दान करें, क्योंकि धन का हम दान करेंगे वो धन से वो बीड़ी सिगरेट पिएगा तो वो कर्म फल लगेगा लगेगा। भोजन नहीं तो प्रसाद नहीं, अगर वो भोजन नहीं खाएगा तो भगवान को अर्पण करके नहीं खाएगा तो पाप खाएगा, है परिवार का पेट पाल के पाप खुद भी खिला रहा है, परिवार में भी पाप खिला रहा है, तो क्यों ना उसको प्रसाद ही दें, कृष्ण प्रसाद ही दें हम, तो उसको बुला सकते हैं घर में करके उसे बुला सकते हैं, फूड फॉर लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, अगर हम डायरेक्टली नहीं कर रहे तो फूड फॉर लाइफ के लिए दान करें, डोनेशन करें, हमारे भक्त जाते हैं झुग्गी हमें मिड डे मील के लिए दान करें, तो वहां जाते अगर हम भी बना सकते हैं पर्सनली हाथ से तो हम उसके लिए दान दे सकते हैं स्कीम में, फूड फॉर लाइफ मिड डे स्कूल्स के लिए, मिड मील्स के लिए, तो दान जाएगा वहां पर भूखों को पेट भरेगा, लेकिन राइट चैनल यानी खुद प्रसाद दे दें या प्रसाद के लिए दान दें। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर असमर्थ अवस्था में हमारे पास आ रहा है हमें उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए, एक व्यक्ति पंगु सा आपके सामने आके रो रहा है चिल्ला रहा है कुछ मांग रहा है यूं करके और आप पिछो पिछो हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा कर रहे हैं तो हमारा हृदय कठोर हो रहा है, तो कठोर हृदय में कृष्ण नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ देना चाहिए उसको प्रसाद, अगर प्रसाद नहीं है तो उसको बोलो बोलो हरे कृष्ण बुलवाओ, तो महाराज कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्रसाद नहीं है तो आपको अपने आप को सजा देनी चाहिए, तो सजा क्या है कि उसको एक रुपया दो ताकि आपको कर्म फल लगेंगे, फिर आपको अगली बार याद रहेगा कि भैया कर्म फल से बचना है तो प्रसाद ले जाओ, एज अ पेनल्टी यू गिव हिम सम डोनेशन सो दैट आप हमेशा याद रखें कि मैंने कर्म फल से बचना है तो दान वो करना पड़ेगा, प्रसाद देना चाहिए। नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है उस धन का, वो गलत प्रयोग करेंगे, उनको हम प्रसाद ही दे सकते हैं, है? नहीं नहीं आटा से सिर्फ भोग थोड़ी लगा भगवान को, भोग थोड़ी लगा हुआ है, प्रसाद क्या है, खुद से बहुत दया आ रही है हमारे मन में, घर में खाना बनाए भगवान को अर्पण करें 10-15 चपाती दाल के साथ दे दें उसको, अगर दया आ रही है ज्यादा तो दे ना उसको फिर, भाई ना हम खुद सुस्ती कर रहे हैं, वास्तव में दया है तो और दया हमारी बढ़ेगी, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे उससे, हम क्यों शॉर्टकट मार रहे हैं, चलो अगले जन्म में देख लेंगे कर्म फल भुगत लेंगे, और क्या बताइए। हाँ तो वो सब देखिए माता जी वही बात आ गई ना कि आप कृष्ण से कृष्ण को चैलेंज कर रहे हैं ना, फिर आप पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बोलो कृष्ण आप साइड में हो जाओ मैं देखूंगा, नहीं 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 आप फिर सिद्धांत से अलग हो रहे हैं हमारे ना, उसके कहने से हम भगवान थोड़ी बन जाएंगे, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। एनी वे आई थिंक और चर्चा कर लेंगे, 9:30 हो गए यहाँ पे। क्षमा कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हैं। हर एक्टिविटी को हम कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। ठीक अभिमान ही नहीं आता, वो एजुकेशन एजुकेशन थोड़ी है। उस एजुकेशन से वो आईआईटी का इंजीनियर मिल गया तो नरक में जा रहा है। अभिमान नहीं आया, समझ आपका अभिमान बिल्कुल खत्म है। आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, अभिमान नहीं आया। जो आपने दान दिया उसको पढ़ाया लिखाया, भगवान का ज्ञान नहीं दिया, इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, खूब पाप करके नरक में जाएगा। आपकी एजुकेशन से वो नरक में जा रहा है तो आपको भी रिएक्शन मिलेगा। फिर अगर आप वास्तव में उसका भला करना चाहते हैं तो उसको भगवत ज्ञान दीजिए। मंदिर में लाइए अलग बात है, भगवत ज्ञान दीजिए आप, कृष्ण से जोड़िए उसको। ठीक है, ये बुलवाते हैं, बोल देते हैं तो पैसे की जगह प्रसाद दे दो, बुलवाते थे पहले। नहीं नहीं चले ठीक है, बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। ग्रंथ साक्षी में भागवतम की
जय।
श्रीला प्रभुपाद महाराज की
जय।
अनंत कोटि वैष्णव बिंद की
जय।
गौर प्रेमानंद
हरि 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 बोल।